ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशसिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् श्रुतिमात्रेण यत्पुंसा ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मतॄणाम् वरदत्वाच ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम् ओङ्कारथाश्च शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कण्ठम् विद्वा विनिर्यातो तस्मात् माङ्गुलिका भुवो तस्मात् माङ्गुलिका उपो इति ॐ अथ ॐ अथ ॐ अथ यैरिमे गुरुभिः पूर्वम् पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्वभेदान्ता तान्नित्यम् प्रणतोऽस्म्यहम् सरस्वति नमस्तुभ्यम् वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भम् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माहम् ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमत्वनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्तु धर्म ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तीसरे मंत्र का पाठ मेरे पीछे करना। असूर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसा भृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति तांकं प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। फिर से पढ़ेंगे। असूर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ते प्रेत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। उपनिषद में और गीता में तीन प्रकार के लोगों की चर्चा है। एक तो है जो कर्म सन्यासी है, विविधिषु सन्यासी या विद्वत सन्यासी। दूसरी चर्चा है कर्म योगी की, जो कर्म करता है चित्त शुद्धि और एकाग्रता के लिए और शास्त्र श्रवण से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वो सक्रिय है। एक सर्व कर्म का त्याग करके मुक्ति के लिए श्रवण कर रहा है, वह है कर्म सन्यासी। दूसरा है जिनको कर्म से चित्त शुद्ध हो गया है, अब कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो कर्म का त्याग करके ईश्वर ब्रह्म की आत्मा की एकता का चिंतन करता है गुरुमुख से। दूसरा जिसका चित्त अपरिपक्व है, मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी टेक्स टाइम, इट हैपन्स इन टाइम। आम को पकने में अपना समय लगता है, एक केमिकल डाल के पकवाते हैं उसका मजा नहीं होता है। केले को पकने में टाइम लगता है, ऐसे ही हमारे चित्त को भी परिपक्व होने में, लाइफ ऑफ कर्म योगी, जीवन योग बुद्धि से कर्म करता है तब होता है। तो परिपक्व करते करते वो भी शास्त्र का श्रवण गुरुमुख से करता है, मुक्त्यर्थम, परम स्वातंत्रता के लिए। इसका मतलब हो गया कि जब क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष उपनिषद का अध्यापन कराता है, उस समय उसके सामने दो प्रकार के लोग मुख्य श्रोता है। एक तो वो जिनको सिर्फ अविद्या निवृत्ति के लिए श्रवण करना है, और दूसरा वो जिसको अविद्या तो दूर करना है साथ साथ में और काम भी क्या है, चित्त चांचल्य और अनियंत्रित राग द्वेष को वश में करना, ये दो काम और है। ये करता हुआ श्रवण करता है, दूसरा ये सबसे पार हो चुका है वो श्रवण करता है। मुक्ति ज्ञान से ही होती है, मानी वेदांत के वर्ग में क्लास में मुख्य दो श्रोता है, कर्म योगी एंड कर्म सन्यासी। दोनों को गुरु की सेवा करके गुरु के अनन्य होकर और नम्र होकर गुरु से विद्या प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तो आप जिज्ञासु है, या तो आप कर्मयोगी है या तो कर्म सन्यासी है, ये दोनों को ही गीता श्रुति का श्रवण कराया जाता है, करना चाहिए। एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू दिस टीचिंग फॉर व्हाट, आत्मस्वरूप विज्ञाय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा, मुच्यते सर्व अशुभा संसारा, अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। अभी तीसरा भी है जो सुनने नहीं जाता है और सुनने वाले को मूर्ख समझता है, दो है, स्वयं वेदांत का श्रवण मनन नहीं करता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है और कहेगा कि प्रेमपुरी में सुबह से लोग जाके अपना समय बिगाड़ते हैं, बैठे रहते हैं, कथा वार्ता सुनते हैं। श्रुति ने ऐसे लोगों की निंदा की है, अविद्यायामंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः। ऐसे लोग हैं, अविद्या अंधे नैव नियमाना यथान्धाः। वो लोग लीडर बन जाते हैं, स्वयं अंधे हैं और दूसरे अंधे लोगों को कहता है मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। दूसरा अंधा को दिखता नहीं कि इसको दिखता नहीं है, और ये कहता है मुझे दिखता है, अभी क्या करें। ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड, नजदीक के जो खड्डा है उसमें दोनों गिरेंगे। सब प्रकार के नेता है आजकल तो। अंधे नैव नियमाना यथा अंधाः, अविद्यायाम अंतरे अंधविद्या तमसी वर्तमानः। वेदांत का एक शब्द मालूम नहीं है, ब्रह्म विद्या क्या है मालूम नहीं है, मुक्ति क्या है मालूम नहीं है, बस जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है, बहुत कमाओ, बहुत भोग करो और बहुत नामना प्राप्त करो, जितना कुटुंब बड़ा इतना हम ज्यादा सुखी। छह बेटे, पांच लड़कियां, छह बहुए, पांच जमाई और उनके बच्चे कच्चे, हमको क्या समझते हैं महाराज। हमारे स्वयं कुल के कितने लोग हैं, 70-80 है, बाहर के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब है क्रिकेट की टीम घर में तैयार है, यही है। इसमें अपने को धन्य धन्य समझते हैं, और जो प्रेमपुरी में जाने वाले हैं उनको बड़ी निंदा करते हैं, अरे प्रेमपुरी में क्या रखा है, चौपाटी के भेलपुरी में सब कुछ रखा है। ये प्रेमपुरी वाला बेचारा जानता नहीं सीधा साधा है, क्या बोलेगा उसको। हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसे व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। मौनम सर्वअर्थ साधकम, जो हमारी बात को सुनकर मानने वाला नहीं है उससे मनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। अभी ऐसे लोगों की निंदा करने के लिए श्रुति माता एक मंत्र क्यों बिगाड़ती है, इसलिए निंदा निंद्य वस्तु के लिए निंदा, सुनो फिर से, निंदा निंद की निंदा के लिए नहीं होती है, विधेय की प्रवृत्ति के लिए होती है। हम कहें सिगरेट पीना खतरनाक है, उसकी निंदा में हमारा मुख्य नहीं हो, प्रवृत्ति क्या हो उसको छोड़ो, उसमें है विधेय की है नहीं। निंदा निंदा जो है निंदे की निंदा है, पर विधेय जो है उसमें लगाने के लिए है। और जो कर्मयोगी और कर्म सन्यासी आज है वो भी इसी कोटि में एक जमाने में थे, इसलिए यहां उनकी निंदा करके विधेय क्या है कि यही करो कि भैया भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा में विश्वास करो, भगवान की पूजा करो, जप करो, दान करो, व्रत करो, ये सब आपका कल्याण का हेतु है। आइए अभी निंदा है उसको जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि आगे का मंत्र बहुत बढ़िया है और हमारे पास कुल मिलाकर अभी 3 दिन है, आज कल परसों है ना। अब कहते हैं अथ इदानीम अविद्वान निंदार्थ अयम मंत्र आरभ्यते। अब यहां अविद्वान जो ना समझ है, अपने आत्मा को बिल्कुल जानता नहीं है और ये भी जानता नहीं है कि उनको जानने की आवश्यकता है, ऐसा जो है उसको कहते हैं वो आत्मघाती है, ऐसा लिखा है। वो आत्महनो जनाः, वो जो जन है मनुष्य है उनकी संज्ञा दी गई है अपने आत्मा का नाश करने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं। कैसे? आत्मा के स्वरूप को न जानना यही आत्मा का तिरस्कार है। इतना महान व्यक्ति हमारी सभा में है और हम उसका आदर न करें, ये क्या होगा? उसका तिरस्कार हो जाएगा। जिसमें जितनी योग्यता होती है इतना उसका सम्मान करना चाहिए। आत्मा सत्स्वरूप है, उसको मरने वाला मानना ये उसका अपमान है। आत्मा ज्ञप्ति स्वरूप है, उसको जड़ मानना ये उसका तिरस्कार है। आत्मा आनंद स्वरूप है, उसको दुखी दुखी होने वाला मानना ये क्या है? उसका तिरस्कार है। आप लोग को कथा तो मालूम है, तिरस्कार करना हत्या के समान। यहां प्रश्न करते हैं, आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। ये आत्मा का तो कोई छेदन भेदन जला नहीं सकता है, ऐसे आत्मा का नाश हनन कैसे होगा? तो हनन इस रूप से नित्य है, आत्मा उसको मार नहीं सकता है। यह हनन शब्द का अर्थ है उसको पहचानना नहीं, इसका आदर नहीं करना जैसा है ऐसा, यही उसका नाश है। दृष्टांत के रूप में लेते हैं, महाभारत में कथा आती है, बहुत लंबी है, मैं छोड़ दूंगा, बहुत सुंदर कथा है। एक स्थान पर युधिष्ठिर बड़ी जोर से घायल हो गए और उनको बेहोशी में अपने शिविर में ले गए। अर्जुन को मालूम पड़ा कि युधिष्ठिर महाराज को चोट लगी है, तो अपना जो स्थान था उसको भीमसेन को लगा दिया। पहले भीमसेन को कहा, तुम जाके भैया को देखो कि वो काम मैं नहीं करूंगा। युद्ध में अपनी पीठ दिखाना बड़ा अधर्म है, फिर भी अपने प्रेम के वश होकर युधिष्ठिर के पास अर्जुन चला गया। वो अर्जुन को डांट पड़ी कि तूने क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध कर दिया। अरे तू युद्ध भूमि छोड़कर वापिस आ गया, तेरे को और तेरे गांडी को भी तिरस्कार किया। अब गड़बड़ होगी, अर्जुन ने अपना गांडीव निकाल लिया युधिष्ठिर को मारने के लिए। कृष्ण ने देख लिया गड़बड़ होने वाली है, उनका भी नियम था, प्रतिज्ञा थी, जो मेरी गांडीव की निंदा करे उसका सिर कट जाएगा। अब अर्जुन के मेरी तो प्रतिज्ञा है, भैया ने हमारे गांडीव की तारीफ निंदा कर दी है। श्रेष्ठ से कहा, अरे बावरे, अपने बड़े भाई का तिरस्कार तू कर दे, और तिरस्कार करेगा यही उनकी मृत्यु है। और ऐसे गंदे शब्दों में अर्जुन ने अपने भैया की निंदा की, यही उनकी मृत्यु है, और फिर कूट कूट कर रोने लगे, उनके चरण में उगे गए, दोनों भाई गले से गले मिल गए। ये बात महाभारत में है। आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत बड़ी अच्छी छुरी है ये पेट काटने के लिए, घाव काटने के लिए, पर आपका बेटा पेंसिल छोलने के लिए, छिलने के लिए ढूंढ रहा था, ब्लेड नहीं मिली, तो क्या किया? पिताजी का चाकू ले लिया और बहुत बढ़िया ढंग से उसकी क्या हुई, पेंसिल की छिलाई हो गई, बहुत खुश हो गया। अब पिताजी को मालूम पड़ा, एक तूने अनर्थ कर दिया, ये क्या है, ये छुरी का क्या है, दुरुपयोग है। दो चीज याद रखना, आत्मा का दुरुपयोग करना या आत्मा का तिरस्कार करना यही अपने आत्मा को मारना है। अन्यता संतम आत्मानम अन्यता प्रतिपद्यते किम न तेन कृतम पापम चौरेण आत्मपहारिणः। आत्मा है कुछ और आप उसको कर्ता भोक्ता मान रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में है। एक गरीब सज्जन थे, उनको महात्मा ने कहा कि तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, कृपा करके पारसमणि दिया। पारसमणि का ये लक्षण होता है कि उसको भी छू दो वो क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। थोड़े साल के बाद आया तो गरीब का गरीब ही था, तो पूछा कि मैंने जो तुमको पत्थर दिया था वो कहां है। महाराज आपने दिया था प्रसाद इसलिए मैंने छोड़ा नहीं, उससे रोज चटनी बनाता हूं, बहुत बढ़िया चटनी बनती है। किससे? महाराष्ट्र में मैंने देखा, ओ पत्थर के रगड़ के जो चटनी बनाते उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। हाथ पे बनाई हुई रोटी दूसरी होती है, गैस वाली दूसरी होती है। मैंने तो चटनी बनाई इतने साल, अभी पड़ा है, आपको चीज वापिस दे सकता हूं। इसको क्या कहते हैं? उसको न पहचानना और उसका क्या करना, दुरुपयोग करना। आत्मा को आनंद रूप न जानकर कर्ता मानकर उसके द्वारा स्वर्ग लोग भी प्राप्त हो, चटनी भी बनाओ, आखिर उसका क्या है, तिरस्कार है, दुरुपयोग है। अभी गति बताते हैं। ये आसुरी लोक योनि अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। जो भी आत्मघाती है मृत्यु के बाद उस योनि को, उस लोक को प्राप्त करता है। ये मंत्र का अर्थ बताया आपको। अब ये कहते हैं जन्म ऐसा मिले, ऐसे स्थान में मिले जहां अंधकार है। अंधेन तमसा वृता। देखो दो बात कही, एक तो अंधा होगा और अंधकार में जाएगा। अभी कितना हो गया है? अंधा है और अंधकार में रहता है तो क्या होगा? अगर अंधकार में अंधा होता ना, अंधा होता तो टॉर्च लाइट लेके कुछ करता, अभी तो ढूंढ भी नहीं सकते। अंधेन तमसा वृता तामसे प्रीत्या विगच्छन्ति। यहां स्वर्ग तक के सभी लोगों की लोक की निंदा है। असूर्या, ये असूर्या मानी जो लोग विषय भोग में लगे हैं, असुसु प्राणेषु इंद्रिय विषयसु रमन्ते इति असुराः। जो इंद्रिय के शब्द स्पर्श रस गंध है उसमें लट्टू होकर दिन रात रमण भ्रमण करते हैं, उसी का नाम क्या है, असुर। असुर मानी बड़ी बड़ी दाढ़ वाले नहीं, असुर माने भोग परायण व्यक्ति। ये भोगे, ये भोगे, ये परायण व्यक्ति है। तो ये जो है, ये लोक में जाते मरने के बाद क्यों वहां जाते हैं असुरिया नाम लोक? क्योंकि उनके जैसा कर्म है ऐसा गति होती है। यथा कर्म यथा श्रुतम, ये बात आप याद रखना। हमारी दृष्टि जहां स्थित है, हम जिसको पाना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, मन उसके आसपास मंडराता रहता है। कितना भी करो, इतनी ऊंची ऊंचाई पर चढ़ता है चिल, द वल्चर, प्राण कहां होती है उसके? नीचे एक सस्ता दिख जाए या एक चूहा दिख जाए, उस पर तो मुर्दे पे दृष्टि रहती है। ऐसे हम बात तो बड़ी बड़ी करेंगे, दृष्टि कहां रहती है? कई जगह देखा, कितनी बड़ी बड़ी बात वेदांत के नाम पे करते थे, सब कुछ करते थे, आखिर उसके प्रयोजन यही था, हमको लोगों से कितना पैसा मिल जाए, कितनी प्रतिष्ठा मिल जाए। कॉन्ट्रैक्ट करते कि हमको इतना मिलेगा तब हम आपके यहां आएंगे, ये क्या हो गया? दृष्टि कहां है आखिर? भोग पे ही है। हम भी यही सोचते, इतना कमाएंगे तो इतना मजा मारेंगे। तो ये हो गया कि भोग तो वही, दृष्टि वही है। वेदांत, ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर कुछ नहीं है। तो जो जिसको चाहता है उसको ही प्राप्त होता है। ऐसे लोक में जाएगा, पुण्य तो बहुत किया है, ऐसे ऐसे लोक में जाएगा, भोग बहुत मिलेंगे, पर आत्मदृष्टि प्राप्त होने वाले नहीं है। क्यों? तमसा आच्छादिता तान तावरान प्रेत्य, इस शरीर को छोड़कर वहां जाता है, उसको अज्ञान अपने आप नहीं जाता है। एक बात आप याद रखना, ये अपने स्वरूप का जो अज्ञान है उसका आरंभ नहीं हुआ है। अविद्या अनादि है, पर एक बात है अविद्या में, शांत है। शांत है माने अंत सहिते न वर्तते, इतनी पुरानी है, पर बोध होने पर वो नष्ट हो जाता है। गिरी कंदरा, गिरी में जो गुफा है, अनादि काल से पत्थर से ढकी हुई है, पर आज उसको खोल दो तो उसका अंधेरा सूर्य के द्वारा तत्काल दूर हो जाएगा। अनादि अविद्या होने पर भी बोध से वो दूर हो सकती है, पर ये जो कामी, काम कामी, अर्थ कामी जो है, कर्मठ है, वो मरने के बाद उस लोक में जाता है जहां अपने को पहचानता नहीं है, और अपने को पहचानने के लिए वहां कोई उपाय भी नहीं है। मैं अभी जाम्बिया गया था, लोगों ने बताया यहां अस्पताल अच्छी नहीं है, वहां लोग बीमार होते हैं तो प्लेन में उसको उठा के कहां ले जाते हैं? साउथ अफ्रीका ले जाते हैं। उपाय नहीं है वहां। कई देश ऐसे, हमारे भाई भी फंस गए थे थोड़े दिन पहले, वहां का मेडिकल बिल्कुल पुअर है, वहां वन वे होता है, अंदर जाओ फिर। डॉक्टर ने कहा जो मेरी दवा लेता है दूसरी बार आता ही नहीं मेरे पास। एक डॉक्टर के यहां लोग नहीं आते थे, पेशेंट नहीं आते थे, वो सोचे क्यों, जो उसके क्लिनिक के बाहर ऊपर जाने की सीढ़ी थी तो वहां लिखा था ऊपर जाने का रास्ता। ये क्लिनिक क्या है? ऊपर जाने का रास्ता। मां जानने के लिए कोई उपाय नहीं है, निरुपाय है आप। स्वर्ग में ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता है, नरक में ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता है। होगा तो कहां होगा? यहां होगा, और यहां तो बहुत पुण्य कमाया है, कर्मठ है, अमुम यज बहुत पुण्य कमा के वो पहुंचेगा वहां, पर वहां न ज्ञान है न मुक्ति है। बंधन जो कहते हो अंधेन तमसावृता, स्वरूप का अज्ञान भी रहेगा और बाहर भी अंधेरा ही अंधेरा है। कौन ऐसा होता है? एकेच आत्महनो जनाः। तो मैंने समझाया, अपने आत्मा के प्रति उनको जानना क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं, बस यही करो, ये कमाओ, ये भोगो, यही हमारी होशियारी है। आप बेटे को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हो कि अर्थ उपार्जन की विद्या का उपदेश करते हो? अरे भाई, ऐसे धंधा करना, ये धंधा का गुर आपको देते हैं। ब्रह्म विद्या का गुर तो जरूरत नहीं है उसकी, तो जरूर किसकी है, तत्वों में से नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ये पैसा कमाने की विद्या है। स्वयं अंधा, वो स्वयं भी अंधे हैं और दूसरे अंधे को भी उसमें लगाते हैं। ऐसे करके कर्मठ की भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी निंदा की है, यामी माम पुष्पिताम पाचम प्रवदन्ति विपश्चित वेदवादर तापार्थ नई नाम प्राप्त, इस प्रकार से वहां भी निंदा है। आइए, हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम इसको, हमारी दुर्गति न हो, इससे बचने के लिए देखो एक बात भाष्य में लिखिए बृहदारण्यक उपनिषद में, जिज्ञासु के लिए स्वर्ग में जाना भी पाप है। क्यों? वहां भोग नहीं होता है और लंबे समय तक भोग भोगना पड़ता है, और भोग भोगते हुए कोई अपराध हो गया तो फिर से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इंद्र इतना पुण्यशाली शतक क्रतु है, फिर भी उसे कई बार अपराध हुआ, उसको भी ब्रह्म हत्या लग गई। महाराज हमेशा कहते थे स्वर्ग में भी वैकुंठ में भी श्रापाश्रापी होते हैं। गंगा जी को श्राप लग गया, नीचे आना पड़ा, ऐसा होता है। इसलिए जहां कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसको दूर करने का उपाय नहीं, व्यक्ति अवश्य गड़बड़ करेगा। इसलिए भैया मेरे, आत्मा का चिंतन करो। यहां कहते हैं यस्य आत्महनः हननात् अविद्वांसः संसरति, जो आत्मा का हनन करता है उसी के कारण जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले संसार में पुनः पुनः भटकता है। तत् विपर्यायणे, उससे विपरीत क्या है? विद्वांसः, विद्वान जना, मुच्यन्ते, वो मुक्त हो जाते हैं। ते न आत्महनः, वो आत्मा की हिंसा करने वाले नहीं। आत्मा की हिंसा क्या है? उसका दुरुपयोग करना और उसका तिरस्कार करना। आत्मा का तिरस्कार क्या है? उसको पहचानने की कोई परवाह नहीं है, तिरस्कार करते तो मरने वाला है, ये तो जड़ है, ये तो दुखी आत्मा है। ये बात है, हम अपने को ही, मैं सुनता हूं ये जय जगदीश हरे, अच्छा है, मैं मूरख खल कामी, हर रोज बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं। अब कभी तो होता है कि मन में के रोक दे इसको बोलने का। मैं सेवक, तुम स्वामी करो ना, मैं मूरख खल कामी, कृपा खल कामी, अपने को बता रहे कब तक खल कामी। इसलिए न काम कामी, उसका तिरस्कार नहीं करता है। तत्केदृशम आत्मा, आत्मतत्वम, वो कौन से आत्मतत्व को जानते हैं? तब मंत्र आया जिसके लिए मैं बहुत व्याकुलता के इसको पूरा करे, तीन चार मंत्र इतने बढ़िया ईशावास्य के, जिसमें आत्मतत्व क्या है, आपकी सच्ची पहचान क्या है वो बताई है। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्दावतो न्यान अत्तेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदुवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यस्य बाह्यतः। एक बात है उपनिषद में, स्वरूप को ठीक ठीक बताने के लिए यहां विरोध का उपयोग किया जाता है, पैराडॉक्सिस आर यूज टू अनफोल्ड. आत्मा का वर्णन दो रूप से होता है, एक तो निरुपाधिक आत्मा और दूसरा है उपाधि सहित आत्मा. निरुपाधिक स्वउपाधिक. अभी पहले उपाधि शब्द समझ लीजिए. जो किसी के समीप रहकर अपने गुण दोष दूसरे पे थोपित करता है, उस गुणवान दिखाता है, उस पे वो गुण नहीं है पर उसको उस गुण वाला जैसा प्रतीत करता है, इसको कहते हैं उपाधि. मुरलीधर कृष्णा ये क्या है? मुरली भगवान से इतनी नजीक है कि उनको मुरली वाला कहते हैं. वो भगवान नहीं है, वो भगवान से भिन्न है. पीताम्बर धर कृष्णा, ये पीताम्बर क्या है? भगवान नहीं है, भगवान के पहना हुआ है कपड़ा, इसको उपाधि कहते हैं. सफेद कपड़े वाले गिरीश भाई कहेंगे ये क्या है, कपड़ा की उपाधि इसको कहते हैं. उपसमीपे स्थित्वा स्वीयान धर्मान अन्येषु दत्ते इति उपाधि. अगर स्फटिक के पास जपा कुसुम का लाल पुष्प रखते हैं तो स्फटिक लाल दिखता है. स्फटिक में कोई विक्रिया नहीं हुई लाल होने के लिए, वो लाल दिखता हुआ भी क्या है, निर्मल है. तो उपाधि से जो समीप है वो उपाधि के गुण धर्म से प्रभावित नहीं होता है, तद गुणवान दिखता होने पर भी उससे मुक्त है. मैं अपने को जीव रूप में देखता हूं, कारणोपाधि ईश्वर है, कार्योपाधि जीव है. ये जीव जो है छोटा मोटा अविद्या वाला कर्ता भोक्ता, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ये उपाधि है आत्मा के लिए, आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं सउपाधि का आत्मा. और जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बताएंगे तब उसको कहते हैं निरुपाधिक ब्रह्म. जैसा ब्रह्म है ऐसा बताया, यह है बोलने की शैली. तो यहां श्रुति माता कहती है अनेजत न एजत एजरु कंपने. एक पुस्तक ये उसका नाम है स्पंद तत्व, कश्मीरियों की है. फैक्ट ये पृथ्वी में, ये दुनिया में, मल्टीवर्स यूनिवर्स जो भी कहो, यत किंचित जगत्याम, सब कुछ क्या है, स्पंदित हो रहा है. कोई भी चीज स्थिर अचल ध्रुव नहीं है, सब कुछ क्या है. एक अणु भी लीजिए उसमें भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमते रहते हैं. हमारे सबसे नजीक का स्टार तारा कौन सा है, सूर्य है. उसके आसपास क्या है, सभी ग्रह घूमते रहते हैं. एक बात है, बच्चे मां के गोल गोल घूमते रहते हैं, नियम है. तो मुर्गी को देखो उसके बच्चे क्या करते हैं, वहीं घूमते रहते हैं. हम लोग का भी यही है, मां के आगे पीछे ही घूमते हैं, वही पत्ते को पसंद नहीं है. जिससे जो पैदा होता है उसके पीछे घूमता है. सूर्य से नवग्रह प्रकट हुए, अष्ट ग्रह प्रकट हुए, वो किसके आसपास घूमते हैं, उसी के पास घूमते रहते हैं. ऐसे करोड़ों तारा है सूर्य के समान, और करोड़ों मंडल है, पर सबके सब क्या है, एजरु कंपने. एक बात आप विज्ञान से जानते हैं, अ चेंज इज नोटेड विथ रेफरेंस टू चेंजलेस. from place P1 to place P2 in time T1 to T2, the object moves. Ek sthan se dusre sthan, kisi ka kampan ki gati hui, ek gati ko dekhne ke liye koi cheez aisi honi chahiye jisme gati nahi hai. Dono gati kar rahe hain to lagega dono sthir hai. इसलिए गति वाला पदार्थ जो है उसको देखने के लिए कोई चीज होना चाहिए जो गतिविहीन है. बौद्धों को हमने यही कहा कि सर्वम क्षणिकम. क्षणिकम कौन कहता है? क्षणिकम इज मोमेंटरी बिपिप कॉन्शियसनेस. एक क्षण में पैदा हो गया, नष्ट नष्ट, पैदा हो गया, बॉर्न गॉन बॉर्न गॉन बॉर्न गॉन. जो संबित पैदा हुई और चली गई वो कहेगी मैं क्षणिक हूं क्योंकि वो तो है, और जो चली गई वो नहीं कह सकती मैं क्षणिक हूं क्योंकि वो तो नहीं है. समझ में आया आपको? स्वामी जी चाय नहीं पिया था सुबह. जो है इस समय, जो क्षणिक है, वो नहीं कह सकता कि मैं क्षणिक हूं. जो विज्ञान क्षणिक है क्योंकि है, और जो गया है वो नहीं कह सकता है कि मैं नहीं हूं क्योंकि नहीं है. अभी मैं था भी नहीं, कहता है ही नहीं, तो निकट क्षण मालिक. इन लोग को कहते हैं सर्वम क्षणिकम क्षणिकम. तो ये क्षणिक के कहने के लिए कौन होना चाहिए? स्थिर नित्य कूटस्थ कूटवत तिष्ठति कूट मायायाम तिष्ठति. ये बदलती हुई चीजों के नीचे कुछ ऐसा है जिसके कारण हम कह सकते हैं ये सब बदलता जगत है. शरीर बदल रहा है, इंद्रियां बदल रही है. वालों पढ़ चलो, थोड़े दिनों के बाद पुस्तक ऐसी जाती है. माने क्या? बेताड़ा. फिर आके हाथ नहीं जाता तब चश्मा लाते लोग. कान गए, कितनी भी दुर्गंध हो सुनाई नहीं देता है, सुगंध नहीं आती है. जलयंती तेज है इंद्रियाणी, भूख प्यास कम हो जाते हैं, प्राण बदल गए. वो भी क्षणिक एजरु कंपने. मन आप लोग को मालूम होगा आजकल सबसे बड़ा बिजनेस है मेडिटेशन. दिल से कंट्रोल द माइंड. मेरा प्रश्न है कंट्रोल उसको किया जाता है जो हो. मैं क्लिप को कंट्रोल कर सकता हूं कि मेरे हाथ में है, पर जो एक एक वृत्ति एक एक क्षण में मरती जाती है तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? दे ऑल टॉक हियर ऑल्सो पीपल मे बी टॉकिंग. मन को संयम में रखो, ऐसे चलता है ना. कौन करेगा संयम? है ही नहीं दूसरे क्षण में. जिस मन को दृष्ट नष्ट स्वभाव है, क्षण भंगुर है. एक ही कर सकते हैं कि चित्त की धारा को कुछ एक विचार में, एक टॉपिक में, एक विषय में लगा सकते हैं. हम गणपति का ही चिंतन करेंगे, विचार बदलते ही जाए पर सब विचारों का केंद्र गणपति हो, इसको कहते हैं मास्टरी ओवर द माइंड. मन को वश में कर लो. कहां है तुम वश में किसको करोगे? वो समझते नहीं. स्वयं कंफ्यूज परान कंफ्यूज है. ये लोग क्या है, स्वयं कंफ्यूज है. दूसरे को क्या करते हैं? मन को संयम में रखो, काबू में रखो. कहां है मन जिसको काबू में करे? हमारे स्वामी दयानंद जी से मैंने बात सोची तब तक मैं भी नहीं जानता था. यू कैन पुट इट इन अ सर्टन वे. यही है, जैसे पानी बहता जाता है उसको दिशा दे सकते हैं, उसको हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि पकड़ने के लिए है ही नहीं. अंडरस्टैंड द लॉजिक. पर ये मन बदलता है. बुद्धि अगर है वो भी क्या है, बदलती है कि नहीं बुद्धि? ये बुद्धि हर रोज यहां आइए ना, नई नई बात सीखेंगे तो बुद्धि क्या होती है? अज्ञान जाता है जाता है, ज्ञान आता है आने के बाद जाता नहीं है, अज्ञान जाने के बाद आता नहीं है. एक बार समझ में आ गया तो आ गया, एक बार लाइव वायर को टच कर लिया है ना, इलेक्ट्रिक का शॉक लगा, फिर दूसरी बार पूछना पड़ता है इससे क्या होगा। एक बार मालूम हो गया तो मालूम हो गया। एक बार लविंग मरचू खादू अने झाड़ बड़ी, फिर दूसरी बार पूछना पड़ता है लविंग में जैसे क्या होगा। नहीं, उसको देख के भी उसको जलन होती है। फिर तो ज्ञान ऐसा है, इज्रुकंपने तद आयजत। तो यहां कहते हैं तद आयजती इज्रुकंपने, कंपनम चलनम, कंपन मानी चलना, स्व अवस्था प्रच्युति ही, अपना जो स्वरूप है उससे दूसरे रूप में चला जाना। अभी वो मिट्टी थी, अभी घड़ा बन गया, अभी दूध था, अभी क्या हो गया। मैंने आपको दही की इस बात कथा सुनाई थी ना, नहीं सुनाई थी? हाँ, सिकंदर वाली कथा सुनाई थी आप लोग को? नहीं नहीं, हो गया अभी, कितनी बार सुना है। दही से बन गया, दही को वापिस नहीं कर सकते, विकार हो गया। पर ऐसा आत्मतत्व नहीं है, अच्युत है, ऐसे ही रहता है। काल में उसमें काल ऐसा है कि बॉर्न इन टाइम इज गॉन इन टाइम। जो काल के चक्कर में आ गया, जो पैदा हुआ सो मरेगा, बदल जाएगा। इसका अर्थ ये नित्य है, ये बदलता नहीं है। महाराज, ऐसे न बदलने वाले कितने हैं स्वामी। ये बात तुमको रोज सुनने को मिलती, घरवाली रोज कहती है तुम बदलते देखो एक बात सुन लो, हमको वेदांत से व्यावहारिक है। आपने किसी को इस जीवन में बदला है? आप ईमानदारी से कहो, पहली बात आपकी घरवाली या घरवाला आपसे बदला? वो कहता है मैं ठीक हूं तू बदल जा, ये होता है ना। और हमारे दूसरी बात है, एक दूसरा प्रश्न है, हम बदल नहीं सकते किसी को, ये समझ में आने के बाद भी दूसरे को बदलने का प्रयत्न बंद किया कि नहीं किया है? नहीं किया है, अने बदली नहीं रही है, अने बार बार पाठ भणावी नहीं रही सर। यूं समझे ये क्या है, ये क्या है? जानते हैं रेती से तेल नहीं निकल सकता है, फिर भी उसको पीसते जाओ तो क्या है? अब कल गड़बड़ है ना, यू कांट चेंज एनीबॉडी। अगर व्यक्ति को बदलना है तो कोई रोक नहीं सकता है। ये भी बात है, हम रोज सुनते हैं। देखो, आपको सुखी होना तो एक ही है, लोग जैसे हैं ऐसे उसको स्वीकार कर लो, दुनिया जैसी है इसको ठीक कर स्वीकार कर लो, आज से सुखी है। और मन में सबको बदल के मैं ठीक हो जाऊंगा, सरकार को ये करना है, इनको ये करना है, इनको ये करना है, तो आपका जैसा दुखी। और दूसरी बात सुन लो, एक तरह व्यवहार की है, आपके वश में क्या है? कई लोगों की बिग बिकॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अ टेंडेंसी टू कंट्रोल, हमारे वश में होना चाहिए। आपको मालूम है जो दूसरे को वश में रखना चाहता है वही उसका परवश हो जाता है। टेंडेंसी टू कंट्रोल, इनसिक्योरिटी। आपको मालूम है जेलर जो होता है तो सब कैदियों को जेल में जीवन भर रखने के लिए वो कहां रहता है? और ये प्रिजनर्स जो होता है जेल में रहने, कैदियों का नाम होता है फ्री बर्ड, और थोड़ी देर बाहर जाते फिर अंदर जाते, बाहर जाते तो ज्यादा कौन फ्री है? सांस कहती है मैं बहू को कंट्रोल में रखूंगी, तू बैठी रही है कहीं भी जाके आएगी। नथिंग इज अंडर योर कंट्रोल, स्टॉप योर एजिंग, कैन यू कंट्रोल योर एजिंग? वॉट एनी वे, एज कंपने न एजती। कितने हैं इसे नहीं बदलने वाले, कूटस्थ कितने हैं? ये बात उपनिषद ही कह सकती है, तद एकम तच्च एकम, भगवान शंकराचार्य कहते हैं सर्वभूतेषु। गीता का महावाक्य देखो तेरे अध्याय में, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। ये भारत है, सब शरीरों में जो शरीर को जानने वाला क्षेत्रम जानातीति क्षेत्रज्ञ है। माम विद्धि, गीता में कोई नंदन नहीं है, कौन बोल रहा है? व्यास जी ने साक्षात ईश्वर को रखा है वहां, ईश्वर उवाच है, भगवान उवाच है। माम विद्धि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपम एकम अद्वितीय माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। तो क्षेत्र तो विकारी है, क्षेत्रज्ञ अविकारी है और वो एक है, ठीक ना? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। ये गीता के श्लोक के अनुसार उपनिषद बने, ऐसा? हाँ भूल मत करना, उपनिषद के अनुसार कौन है? गीता है। हाँ ये बात याद रखना, एक है अनेजत है। अब कहते मनसह जवीय है, आपका मन तो बहुत गतिमान है। पहली बात यह, हमारे स्वामी चिन्मय जी कहते हैं कहीं भी पहुंचना है मन पहले पहुंच जाता है। आपको गोकुल जाना है तो मन पहुंच जाएगा गोकुल। और प्रॉब्लम इज दिस बॉडी हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड, दैट इज ओनली प्रॉब्लम। यहां बैठे बैठे अमेरिका के चिंतन को मेरा मन अमेरिका पहुंच गया, न्यूयॉर्क पहुंच गया, पर ये लगेज जो है ना, बॉडी जो लगेज है उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, मन को पहुंचने में पैसा नहीं लगता है। भतृहरि एक जगह मजाक करके मन की कहते हैं, ए मन, एक क्षण में तो वैकुंठ पहुंच जाता है, ब्रह्मलोक पहुंच जाता है, नरक भी पहुंच जाता है, कभी कभी सब जगह पहुंचता है, हिमालय पहुंच जाता है, पर तू भूल से भी आत्मा में क्यों नहीं पहुंचता है? सब जगह तो उड़ता हुआ पहुंच जाता है, जाओ आत्मा में। वो जानता है यद कत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वहां जाऊंगा तो वापिस नहीं आऊंगा, वन वे ट्रैफिक है, मिथ्य हो जाऊंगा। इसलिए कहते हैं मनसह संकल्पादि लक्षणात् जवीय जवत्तरम, उससे भी ज्यादा गतिमान है। कथम विरुद्धम उच्यते, आप विरुद्ध बात क्यों कहते हैं? अभी कहते ध्रुवम है, अभी कहते गति वाले हैं, ये क्या बात है? ये तो हमारे मिनिस्टर ही बोल सकते हैं, मैंने नहीं कहा था। और दूसरी जगह वो लोग दिखाते हैं उन्होंने ही कहा था, आजकल तो क्लिप लगती है ना, दोनों बात एक ही सर्व कह रहे हैं। कामराज एक बार कहा, हमको मालूम नहीं कि टैक्स भरने का होता है। थोड़े साल पहले इंडिया को बनाना कंट्री कहते थे, मालूम बनाना कंट्री, बनाना मानी केला, बनाना कंट्री। क्यों? एक हमारे प्राइम मिनिस्टर हर रोज बोलते हैं इसको, इस देश को बनाना है, इसको बनाना है, हर समय बनाना है, इसके भारत का नाम बनाना कंट्री हो गया था। बनाना है, बना के दिखाना है, अच्छे दिन आएंगे, नया सूत्र अभी बजट आएगा और क्या है, अच्छे दिन में जवत्तरम जवीय न विरुद्धम उच्यते। एक बार कहा स्थिर है और कहा अत्यंत गतिमान है, दो नहीं हो सकता है, जो स्थिर होगा वो गतिमान नहीं होगा, जो गतिमान होगा वो। तब उन्होंने कहा अपने स्वरूप से स्थिर है, उपाधि के गति से गतिमान दिखता है, आकाश अचल है, पर घड़ा में यहां से ऋषिकेश ले जाऊंगा ऐसा लगेगा यहां का आकाश कहां पहुंच गया, ऋषिकेश पहुंच गया, ऐसा होता है ना, घड़े के साथ साथ आकाश भी गया। अरे घड़ा की उपाधि से लगता है आकाश में गति है, शरीर की उपाधि से लगता है आत्मा भी गति करता है, एक पात्र से दूसरे पात्र में पानी ले जाओ तो प्रतिबिंब सूर्य भी लगता है ये गति करता है, पर जो मूल सूर्य है वो गति रहित है, प्रतिबिंब गति करता है, आकाश गति करता नहीं है, आकाश स्पेस डजंट ट्रैवल, इन स्पेस यू ट्रैवल। औपाधिकम एव निरुपाधिकम उपाधिकत्वेन उपपत्तेः अनकेते। अभी हो गया टाइम, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः।